इस संसार में कोई सुखी नहीं है। भगवान की चक्की, काल चक्र की चक्की चल रही, इसलिए हम जेलखाने के अंदर में दुख कष्ट भोगने के लिए आए हैं। इसलिए इस जगत में वही सुखी है, हो सकता है, जो शुद्ध रूप में गुरु पद आश्रय कर गीता, भागवत, वेद, उपनिषद, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते हुए भगवान का भजन करे। केवल सच बोलने से भी नहीं होगा, समाज की सेवा करने से भी नहीं होगा, यह होगा भगवान के नाम के आश्रय से। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इस चीज को याद रखना चाहिए। इसलिए इस जगत में हम यदि स्मरण करेंगे, बड़े सहज रूप में होगा, चलते फिरते, उठते बैठते, फिसलते हुए भी किसी प्रकार से उनका स्मरण हो, यहां तक कि उल्टा भी हो जाए, जैसे हमारे वाल्मीकि जी ने उल्टा मरा मरा किया, जैसे तैसे ये भगवान का नाम निकल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आजकल बहुत से प्रचारक लोग, बहुत से लोग हम समझते हैं कि दिल्ली में तो कहीं नहीं कहीं बड़ी बड़ी सभाएं होती, उसमें हजारों आदमी आते हैं, किंतु ठगते हैं लोगों को। वेद शास्त्र के अनुसार, भागवत गीता के अनुसार में भगवत भजन करने का वो शिक्षा नहीं देते। वो कहेंगे जो भगवान निराकार है, कोई कहा जाए निरंकारी, कोई कुछ कोई कुछ। अरे निराकार है तो ये जगत कहां से आ गया? इस चीज को याद रखेंगे। हमारे वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत सभी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण से बढ़कर के कोई पतत्तर नहीं है। इस चीज को याद रखें। कितने मत मतांतर आ रहे, आजकल बौद्ध भी फिर सिर उठा रहा है, जो भगवान और वेदों को भी नहीं मानता। जैन धर्म में भी उठ रहे हैं, नास्तिक हैं वो लोग सिर उठा रहे हैं। और सचमुच में जो सच बात है, भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में भर दी। कलयुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम अब केवल। इस चीज को लोग भूल जाते हैं, उनके बातों में आ जाते हैं और मनमाने मत गणंत सब विचारों को पालन करते हैं, किंतु गीता भागवत के अनुसार में नहीं लेते। कृष्ण ने कितना सरल सहज उपाय बतलाया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम मेकम शरण, सब धर्मों को छोड़, मैं जो कृष्ण हूं उसका शरणागत हो, यदि कल्याण चाहते हो मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगा, मां सुचा, शोक मत कर। लोग भूल जाते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म में रहो या त्याग करके रहो, जहां रहो जहां वहीं से भगवान का नाम करो। स्थाने स्थिता, जो जहां है वहीं से भगवान का भजन करें। जो ब्रह्मचारी त्यागी है वहीं से करें, सुखदेव गोस्वामी, नारद, नारद गोस्वामी इत्यादि वहीं से करें, और ध्रुव प्रहलाद इत्यादि गोपियां हैं वो संसार में रह करके करें, किंतु भजन करें। तो आज ये बेटी के विवाह परिणय सूत्र के लिए हम लोग इसको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आज हम लोग इसको आशीर्वाद देकर के दो चार बातें मैं बतलाऊंगा। पहले हम लोग इसको आशीर्वाद दें, जैसे ये कहेंगे ऐसे आप उसको रिपीट करके, और अंत में फिर इसको हम आशीर्वाद दें। बोलिए।
ओम स्वस्ति नो, स्वस्ति नो गोविंदः,
गोविंदः
स्वस्ति नो,
स्वस्ति नो
साइड
साइड,
स्वस्ति नो,
स्वस्ति नो
वासुदेवो
विष्णु
दधातु,
स्वस्ति नो
नारायणो,
नारायणो
नरो वै,
स्वस्तिनः
पद्मनाभः
पुरुषोत्तमो दधातु
स्वस्तिनो
विश्वक्षेनो विश्वेश्वरः स्वस्तिनो ऋषिकेशो हनुर्
भागवतो
दधातु
स्वस्ति
स्वस्ति
सुमंगलैकेशो
महान्
श्रीकृष्ण
सच्चिदानंद घनः सर्वेश्वरेश्वरो
दधातु
ओम
स्वस्ति
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 मंगलं भवतु
कल्याणं
भक्तो
भक्तिर्
भवतु
कृष्ण
भक्ति
भवतु
राधा
दास्यं
भवतु
गोपी
भक्तिर्
भवतु
सर्वं
मंगलं
भवतु
लौकिक
पारलौकिक
मंगलं
भवतु।
समझ
रही है?
इस चीज
को समझो।
हम लोगों ने
आशीर्वाद दिया
हनुमान जी
से,
नृसिंह
जी से,
भगवान
स्वयं कृष्ण
से प्रार्थना
तुम्हारे लिए
कि
भजन
नहीं छूटेगा
चाहे संसार
छूट जाए।
इस चीज को
याद रखना,
इसी से
सुखी रहेगी।
इसने
कहा
गोपी
प्रेम
या गोपी
भाव
लोग
समझते नहीं
हैं। इस
चीज को
समझने
वाले बिरले
हैं।
गोपियों
का
कृष्ण के
प्रति
जैसा
प्रेम था,
कैसा
प्रेम था?
अखंड
प्रेम था
कृष्ण
के प्रति।
रुक्मिणी
सत्यभामा
का अखंड
प्रेम कृष्ण
के प्रति
नहीं था।
कृष्ण
से शादी
हुई
द्वारका
में
और
16,108
रानियों
के साथ में
उनकी शादी
हुई।
सबके
10-10
पुत्र
और
एक एक
लड़की
ये
हुई
सबकी।
देखो
जिस समय
रुक्मिणी
की शादी
कृष्ण
से हुई,
रुक्मिणी
ने स्वयं
अपना हृदय
कृष्ण को
दे दिया।
आप
रुक्मिणी
की बातें जानते
हैं।
निर्लज्ज
होकर के
कृष्ण के पास
में
ब्राह्मण
को
भेजा
और
वो ब्राह्मण
कृष्ण
से कहा
कृष्ण
रात ही में
जाकर
और
उसको रुक्मिणी
को हरण करके
ले आए
और
द्वारका
में उनके साथ
में शादी
हुई।
उस
समय तक
रुक्मिणी
का अखंड
प्रेम
था,
किंतु
जब ही
बेटा
प्रद्युम्न
हुआ
तो
उनका
प्रेम
तीन भाग
में विभाग
हो गया,
एक
कृष्ण
पर,
एक
बेटे पर
और
एक घर
गृहस्थी
पर।
जब
10
बेटे
हुए
तो
10
और
12
भागों
में
उनका
प्रेम
विभाग
हो गया,
कृष्ण
में,
घर
गृहस्थी
में
और
10
बेटों
में
और
एक
बेटी में।
तो
कृष्ण
के
पल्ले कितना
पड़ा?
13वां
भाग
पड़ा।
तो
कृष्ण
इसे
सुखी हो
सकते
हैं?
अच्छा
गोपियां
ब्रज
में आओ।
उन्होंने
क्या किया?
जोग
माया की
होनी
थी कृष्ण
के साथ
में
उनकी
शादी,
किंतु
जोग माया
ने करने
नहीं दिया।
किस
लिए?
गोपियों
का
प्रकाश
नहीं हो
सकेगा,
कृष्ण
प्रसन्न
नहीं
हो सकेंगे,
इसलिए
जोग माया
ने
विवाह
नहीं
करने
दिया।
उन्होंने
दूसरे
गोपों
के साथ
में
माया
के
द्वारा
वंचना
करके
शादी
करा दी।
शादी
किसके
साथ में
हुई?
दूसरे
गोपों
के साथ
में
हुई।
उन्होंने
गोपियों ने
क्या किया?
उनको
प्राण
बल्लभ
माना।
दिल
जिससे
लग जाता
है वो
प्राण
बल्लभ
होता
है।
तो
कृष्ण
के
साथ
में
कृष्ण
को
उन्होंने
सर्वस्व
अपने
को
समर्पण
कर दिया।
पति
रहे
उनसे
कोई
भी
संबंध
नहीं रहा।
बेटे
एक भी
नहीं
हुए,
बेटियां
नहीं हुई।
घर
गृहस्थी
को भी
उन्होंने
छोड़
दिया।
उनका
प्रेम
अखंड
रहा,
इसलिए
अखंड
रूप
में
कृष्ण
को दे
दिया।
इसलिए
कृष्ण
उनके
प्रेम
के
वशीभूत
हो
गए।
न पारे
हम
निर्बद्ध
संजुजान,
कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं गोपियों का प्रेम का मैं ऋणी हूं। क्यों? तुम्हारी जैसा तुमको प्रेम नहीं कर सकते। गीता में उन्होंने कहा जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। हम क्या कहते हैं, जो हमको जैसा प्रेम करता है, जो हमको जैसा देता है, जैसे जो हमारी आराधना करता है, मैं वैसे ही प्रेम करता हूं, आराधना करता हूं और उनको वो देता हूं। यशोदा मैया नंद बाबा तक तो उन्होंने किया ऐसा, सबके प्रेम का प्रतिदान किया, किंतु गोपियों के हैं आए तो उनके प्रेम का प्रतिदान ऋण न चुका सके। क्यों? गोपियों ने तो अपना सर्वस्व दे दिया और पति का प्रेम भी, माता पिता भाई बंधु संसार का शरीर के प्रति जो आसक्ति थी सबको हटा करके कृष्ण में लगा दिया। किंतु कृष्ण छोड़ सकते हैं किसी को? गोपियां ब्रज में करीब करीब करोड़ों थी, करोड़ों गोपियों ने कृष्ण को अपना हृदय तो दे दिया, अब कृष्ण एक को दे सकते हैं? देंगे सबके ऋणी के बन जाएंगे, इसलिए ऋण नहीं चुका सकते। शायद समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं। जैसे गोपियों ने अपना सर्वस्व प्रेम सर्वत्र संसार से निकालकर, पति घर संसार शरीर की आसक्ति सबसे निकाल करके कृष्ण को अखंड अपना प्रेम दे दिया है, कृष्ण अपने कौन से भक्त को छोड़ देंगे? प्रहलाद को छोड़ देंगे? न यशोदा मैया को छोड़ देंगे, न नंद बाबा को छोड़ देंगे, न श्रीदाम सुबल सखा को छोड़ देंगे, न गरुड़ को छोड़ देंगे, न हनुमान को छोड़ देंगे, न अम्बरीश महाराज को छोड़ देंगे, किसको छोड़ेंगे? न आप जो भगवान का भजन करते हैं आपको छोड़ देंगे? वो किसी को नहीं छोड़ सकते हैं, तो गोपियों का ऋण कैसे चुकाएंगे? यदि सबको छोड़ करके उस एक गोपी को भजन करें तब तो उनका ऋण दूर हो जाएगा, किंतु कृष्ण ऐसा कर नहीं सकते, बाकी सबके ऋणी बन जाए। यदि राधा जी को ही सर्वस्व दे दिया तो और गोपियों को क्या देंगे? इसलिए राधा जी को भी सर्वस्व नहीं दे सकते, वो बधे हुए हैं। गोपियां बधी नहीं है, उनका प्रेम निर्मुक्त है, खुला एकदम प्रेम। इस चीज को समझने वाले, वृंदावन में भी रहने वाले, बरसाने में भी रहने वाले हैं, उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, विवाह देने पर आतुर रहते हैं, राधा जी का विवाह भी हम कृष्ण के साथ में दे दें, आतुर रहते हैं, किंतु उनको कोई ज्ञान नहीं। वृंदावन में आपने सुना होगा, बरसाने में एक राधे राधे बाबा ना क्या है रमेश बाबा, वो भी ऐसा ही देखा, वात्सल्य रस के धनी है ये हो सकता है, किंतु गोपियों का प्रेम निराला। राधा जी से विवाह देते हैं, कहते जी विवाह हुआ, अरे विवाह हो गया तो रुक्मणी और सत्यवती भामिनी से कैसे राधा जी श्रेष्ठ हो जाएंगी? तो वो विवाह बंधन में जड़ करके दासी बन जाएंगी और कृष्ण जैसे चाहेंगे न चाहेंगे। यहां ब्रज में क्या करती हैं गोपियां? कृष्ण को नचाती हैं, राधा जी के इशारे पर कृष्ण उठते बैठते और नाचते हैं, ये संभव पर राधे जी के कह सकते हैं जो तुमको ये कपड़ा दिया, तुमको खिलाया पिलाया कहेंगे? कभी खिलाया पिलाया राधा जी को? बल्कि राधा जी खिलाती हैं पिलाती हैं, अपना प्रेम देती हैं, सब कुछ करती हैं। कृष्ण निठल्ले ब्रज में रहते हैं, यदि गोपियां न रहे तो कृष्ण को कोई नहीं पूछे, अपने कुंज से निकाल देंगे, ये काला ये कहां से आया, अंदर बाहर काला निकल जाओ नहीं? और कृष्ण उनकी पैया पड़ते हुए मानसरोवर में जाइए देखिए, जब उनके पैया पड़ रहे हैं कुंज सेवा कुंज में, उनके चरणों की सेवा करते हैं, ऐसा प्रेम कृष्ण का। विवाह हो भी तब कृष्ण को अपना प्राण बल्लभ समझो, एक ही जन्म के नहीं जन्म जन्मांतरों के हमारे प्रियतम है, हमारे सर्वस्व है, उनके मंत्रों में ही है ये। इसलिए सदगुरु पदाश्रय करके भजन करो, अपना घर भी संभालो, समय आ जाएगा तो फिर ये शरीर भी ऐसे ही छूट जाएगा, जमदूत भी नहीं फटकने पाएंगे और विष्णु के दूत आकर के आपको गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे। इसलिए सदगुरु पदाश्रय करके भगवान का भजन कीजिए, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, बल्कि महिलाओं को कंसेशन है इसमें, पुरुषों को इतना कंसेशन नहीं है, वो तो कोई रसोई अच्छी बना करके कृष्ण को समर्पण कर दे बस इसी में उनको सब कुछ मिल गया, और पुरुष लोग लाख लाख वर्ष तपस्या करो ब्रह्मभूत ऐसा बन जाओ, उनको अभिमान है कि मैं पुरुष हूं, यह पुरुष अभिमान जब छूटेगा तब होगा, इनके लिए कुछ गड़बड़ी है। और उनको केवल थाले में भर लिया रसगुल्ले और बना करके सुंदर सुंदर और चीजें, और उनको आरोगा बस इतने में ही सब कुछ उनको हो गया। जग पत्नियों को देखा ना क्या किया उन्होंने, भजन किया, क्या भजन किया। इसलिए ये जगत में तो कुछ भेद है स्त्री पुरुष का, वहां पर इस सब का भेद नहीं, वहां पर भावना प्रधान है। इसलिए आप दूसरों लोगों के चक्कर में ना आइए, जो निरंकारी बाबा हैं कि निरहंकार हैं कि जैन हैं कि बौद्ध हैं कि ये कौन से हैं। बस गीता भागवत जैसी कहती है कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण से बढ़कर के कोई तत्व नहीं है, और वह भी अकेले नहीं, राधा जी यदि हैं तो। इसलिए राधा जी के साथ में कृष्ण का भजन कीजिए, गोपियों जैसा भजन कीजिए सदगुरु के साथ। हमारे जीवात्मा वो ये शरीर का कोई मूल्य नहीं, शरीर कैसा बना है ये। यदि एक लड़की की शादी होने जाती है और वो अभी विश्व सुंदरी कौन है, वर्ल्ड मिस वर्ल्ड, और थोड़ी सी सफेद यहां पर आ जाए तो क्या होगा, थोड़ी सी सफेद दाग यहां आ जाए तो मिस वर्ल्ड हो जाएंगी, तो हो गया खत्म, कोई एक नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा पेट में है क्या, जितने प्रकार के मलिन चीजें टट्टी और पेशाब पैखाना से भरा उसी से शरीर बना, दो दिन के बाद में छोड़ना, इस चीज को याद रखो। विवाह हो तो कृष्ण के साथ में, लौकिक हो व्यवहार के लिए, किंतु असल विवाह कृष्ण के साथ में होना चाहिए, गुरु इस चीज को करता है। तो बेटी तुम भी ये आशीर्वाद रखना, संसार बड़ा बिहड़ है, इसमें धैर्य के साथ में रहना, इसमें धैर्य रहना बड़ा, और विशेष करके पश्चिम की हवा आ रही है, वो पश्चिम की हवा कैसी आ रही है, तलाक का बात बात में तलाक, तलाक के फेर में मत पड़ना, दोनों मिल करके चलना, नहीं तो जीवन में सुखी नहीं हो सकते। मैं सबसे कह रहा हूं, मेरी अपील है, पश्चिम की हवा तलाक वाली ना लगे तुम लोगों को। अभी समझते हैं कि दिल्ली में पहले नहीं था कोई केस, अब सुने कि 1,00,000 अभी पेंडिंग पड़ा है ये तलाक का मामला दिल्ली के कोर्ट में। यहाँ पे बहुत सी लड़कियां भी हैं, मैं जानता हूं, सब प्रकार से गुणी हैं, योग्य हैं, और न जाने कैसे उसके पति और उसको तलाक दे रखा, घर से निकाल दिया, वो सुखी रह सकते हैं, ये हवा ना लगे बेटी तुम लोगों को, और पुरुषों में भी ना लगे। बराबरी का मान करके भगवान का भजन करने के लिए धर्म पत्नी होती है, इस तरह से उसको बराबर सम्मान दिया जाए। आजकल ऐसा नहीं, हम जो कहेंगे वही करो, नहीं करो तो घर से निकाल देंगे, ये क्या हुआ, ऐसा नहीं, उसको उचित सम्मान मिलना चाहिए। जिस घर में उचित सम्मान नहीं मिलता स्त्रियों को, समाज में नहीं मिलता, राष्ट्र में नहीं मिलता, वो समाज राष्ट्र और जाति और मनुष्य ध्वंस हो जाता है। कृष्ण ने महिलाओं को कितना सम्मान दिया, ये हमारे समाज में होना चाहिए, महिलाएं भी समझें, छाती अकड़कर बाजारों में चलती हैं, क्या होगा, वो पुरुषों को निमंत्रण देती हैं, आप लोग भी निमंत्रण मत देंगी, हमारी बच्चियां भी भारतीय संस्कृति की महिला बनिए और भारतीय संस्कृति के पुरुष बनिए। स्त्रियों को माता पत्नी और कन्या, ये चीज रिलेशन हमारे हैं, और पुरुषों के लिए पिता भाई पुत्र, ये संबंध रख, माताएं अपना पति को पति और बाकी को अपना पिता भाई के रूप में लेंगी, छोटे से बच्चे उनको अपने पुत्र के रूप में लेंगी, और पुरुष लोग ऐसे ही, ये संबंध हमारा वैदिक संस्कृति का है। इस तरह से हमारा समाज बन सकता है। आज हमारा समाज बहुत उच्छृंखल हो चुका है, जिसके प्रधानमंत्री शराब गोश्त खाते हों, अंडे खाते हों, तो वो समाज का क्या होगा जिस प्रदेश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गुंडा है, भ्रष्ट है, डकैत है, जहां पर जिसके मेयर बनते हैं हिजड़े पुरुष भी नहीं, नारी भी नहीं, उस देश का क्या होगा? उसकी बेड़ा गर्क होने जा रही है, वो तो भगवान ही रक्षा कर रहे हैं। संसार माने ना माने, ये संसार की रक्षा संत लोग करते हैं। यदि संसार में एक भी संत रहे तो तत्व ज्ञान रूपी प्रदीप रहेगा, संसार का कल्याण होगा, अन्यथा संसार का कल्याण होना असंभव है। देखो तो एक स्वामी जी थे, भक्ति वेदांत स्वामी जी, प्रभुपाद के शिष्यों में से एक केवल, और सारे संसार में हजारों भक्तों को पैदा कर दिया, कृष्ण नाम सब जगत में प्रचार कर दिया। अभी हम लोग जाते हैं, उन्हीं की बदौलत जाते हैं, और विश्व में सब जगह भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं, और विश्व में देखो हरि नाम की गूंज हो रही है। आप लोग भी शराब, गोश्त, प्याज, लहसुन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब कैंसर के घर हैं, टीबी के घर हैं, इनको छोड़ करके सात्विक रूप में रहकर घर में बैठे हुए हरि नाम कीजिए। वो नाम क्या है? वेदों का सार, कलयुग वो कलिसंतरण उपनिषद का मंत्र, ब्रह्मांड उपनिषद इत्यादि जितने पुराण है उसके सार, ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे महामंत्र इसलिए कि इसको कीर्तन कर सकते हैं, गा सकते हैं, माला से ले सकते हैं, जोर से बोलते सकते हैं, धीरे बोल सकते हैं, मन ही मन ले सकते हैं, बिना माला का भी कर सकते हैं, रात में, दिन में, यहाँ तक कोई मरा आदमी मर गया, पिता और माता, भाई बंधु, तो भी ये नाम कर सकते हैं, किसी को लड़का हो गया तो भी कर सकते हैं, सब समय कर, सोते उठते जागते फिरते, इसमें कोई भी नियम नहीं है, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया। बस सब करिए, किंतु इस महामंत्र का जप कीजिए और संसार में सुखी रहिए। इसी के लिए हम लोग यहां पर आए हुए हैं, बेटी को आशीर्वाद दिया, साथ में आप लोगों को भी सहज पद्धति से चलिए और किसी चीज में मत जाइए, विशेष करके हरिनाम का मंत्र ये हो, कीर्तन भी इस मंत्र का, इसमें भगवान ने सारी शक्ति दी है, और जो कीर्तन है उसमें उतना शक्ति नहीं है, किसी भी कीर्तन में नहीं है, चाहे वो जैसा भी हो, किस इन मंत्र का कीर्तन करने से भगवान की सारी शक्ति इसमें है। हरे हमारे सारे संकटों को हरण करने वाली, कृष्ण के चित्त को भी आकर्षण करने वाली अपनी प्रेममयी सेवा से, उस राधिका जी का नाम हरा है, इसलिए हरे कृष्ण राधा कृष्ण, और हरे राम, हरे माने राधिका जी, और राम माने यहां राधा रमन कृष्ण से है, दशरथ पुत्र राम से नहीं, एक आदमी के दो उपास्य नहीं होते, इसलिए सदगुरु से ये सब मंत्र लेकर के भगवान का भजन करो, सुखी रहो, घर में रहो, जहां फिर भगवान का नाम करो। इसी वक्तव्य के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, आशीर्वाद बेटी को दिया, अभी हमारे ब्रह्मचारी लोगों को और महाराज लोगों को अभी लौटना है, अभी मथुरा वृंदावन लौटना है, इसलिए बहुत विलंब हो जाएगा, और मैं भी अधिक रात तक बोलने से हमारे लिए भी असुविधा है, अधिक से अधिक एक घंटा, विदेशों में भी जाता हूं बस एक घंटा, उतना भी सब लोगों के लिए पूरा रहता है। अभी मैं कल ही जा रहा हूं रात में उत्तर पोल से दक्षिण पोल, और पूरब से लेकर के फिर पूरब पश्चिम होते हुए फिर वो सारे इधर से उधर और इधर से उधर सारे पृथ्वी में जा रहा हूं। जहां जाते हैं तुम्हारी जैसी ही बेटियां और बेटे, हजारों लोग एकत्र होते हैं और भारतीय संस्कृति की बात को सुनते हैं और करते हैं, उसमें से बहुत से लोग यहां पर उपस्थित हैं, विदेशी से भी बहुत से लोग, अभी 700 आए थे जिसमें यहां पर भी 10-5 होंगे। इसलिए आप भारतवासी होकर के, भारत माने क्या? मट्टी नहीं, भारत, भा माने प्रकाश, तत्व ज्ञान का प्रकाश, भगवत तत्व का प्रकाश जहां है उसमें जो रथ है, उसमें जो लग्न है, उसको कहते हैं भारतवासी, उसको कहते हैं भारत, जहां पर कि दिव्य ज्ञान है। छोटे से बच्चे भी कृष्ण का भजन करते थे, लड़कियां भी भजन करती थी। पूछो उनसे, जो एक वृंदावन में काला सा लड़का है, बंसी बजाता है और गैया चराता है, कौन है? तो वो छोटा बच्चा भी कह देगा कृष्ण है। यह है भारतवासी का लक्षण। यदि भजन नहीं करता है तो वो भारतवासी नहीं है। अभी हमारे राष्ट्र के जो कर्णधार है वो भारतवासी नहीं है, वो वही उधर की संस्कृति इधर ला रहे हैं। वेदों का प्रचार होता, उनका विचार होता और हमारी भक्ति का विचार का प्रकाश होता, संस्कृत का प्रचलन होता, तो हमारे देश का कल्याण होता। आज सारे विश्व हम लोगों का अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं और यहाँ के लोग राष्ट्र कर्णधार के कानों में जू नहीं रेखता। इसलिए मैं यहीं पर वक्तव्य समाप्त करता हूँ। गौर प्रेमानंदे, लो एक मंत्र कर दो, महामंत्र ये ले लो।